हरे कृष्णा। तो मुझे इसका नोटिस नहीं मिला था, बहुत कम मिला। गुरु महाराज ने कहा कि बस आज तुम कुछ इसके इस बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं उस विषय पे थोड़ा कुछ बोल दो। तो इसलिए हमने सोचा कि हम बहुत ब्रीफ में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे कि हमने एक तो थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी हम लोगों ने क्या करा, और फिर मेन पॉइंट्स हमारे जिस तरह मैंने अपने बच्चों को बड़ा करा और पढ़ाया उसके मेन पॉइंट्स आपको आज दे देंगे, क्योंकि मुझे बताया गया कि समय सिर्फ 9 बजे तक का है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको संक्षेप में थोड़ा सा इस पर दे। हमारे पीछे वो स्लाइड शो भी है और उसको हम देख सकते हैं, और हम यहाँ से बता देंगे कि उनको नेक्स्ट स्लाइड पे वो। तो जैसे कि आपने सुना, हम अमेरिका में रहते हैं कई साल से, हम करीब 22 साल यहाँ थे, फिर वहाँ चले गए। मेरी शादी प्रभु से हुई जो कि वहाँ सेटल थे। तो जब बच्चे हमारे करीब 5 साल और 7 साल के हुए तो हम स्कूल के बारे में सोचने लगे, जैसे कि सभी आप हम सब इस बात को सोचते हैं, और हम क्योंकि हम इसमें अब भक्त बन रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने क्योंकि हमारे आंखें खोली विचार करने के लिए, क्योंकि पहले क्या प्रभुपाद जी के इस संस्था के आने के पहले हम लोग सिर्फ ये सोचते थे कि भाई हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, और फिर क्यों अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, इसलिए अच्छे स्कूल में पढ़ाना है क्योंकि अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो उनको अच्छे जॉब्स मिलेंगे, और जब अच्छे जॉब्स मिलेंगे तो उनकी अच्छी आमदनी होगी और फिर वो सुखी रहेंगे। लेकिन अब क्योंकि हम लोग इसमें आए हैं, प्रभुपाद जी की शरण में आए, तो अब हमको प्रभुपाद जी चैलेंज कर रहे हैं कि क्या हम सिर्फ यही करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजें, उनको पढ़ाई करें और उनकी अच्छी कमाई हो, क्योंकि क्या हम गारंटी कर सकते हैं कि अगर उनके पास अच्छी जॉब्स हो और पैसा खूब हो क्या वो खुश रह सकते हैं? क्या आज हम कह सकते हैं कि जितने लोग जिनके पास पैसे हैं तो आज क्या खुश हो सकते हैं? तो प्रभुपाद जी हमको चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम अब डिवोटीज हैं तो हम उस विचार में नहीं सोच सकते हैं कि जैसे कि आमतौर में लोग करते हैं कि हम उन्हीं की तरफ भेड़ियों की तरफ उसी तरह जाएं और उसी तरह विचार करें। लेकिन एक्चुअली प्रभुपाद जी हमको कह रहे हैं कि हमको हरे वक्त को एक रेवोल्यूशनरी बनना पड़ेगा, मतलब कि हमको सोचना पड़ेगा कि हम क्या चीज ऐसी खास कर सकते हैं अपने जीवन में जो कि जिसके वजह से भगवान हमको नोटिस करें, हमको देखें और समझे कि देखो ये भक्त कितना स्पेशल है, इसने क्या करा मेरे लिए। तो इस तरह करके प्रभुपाद जी हमको चैलेंज कर रहे हैं कि हम औरों की तरह अपने बच्चों को नहीं सिखाएं कि बस पढ़ना है और कमाना है और परिवार पालना है, क्योंकि हम लोग सबको कुछ करना है जिसमें जो बहुत रेवोल्यूशनरी हो। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको और वो तभी हम कर सकते हैं जब हम अपने जैसे कहते हैं हम लोग वहाँ पे अपने डिब्बे के बाहर सोचें, मतलब एक सच्ची एक डिब्बे में हो या तो हम डिब्बे के बाहर सोचें, और उसको सोचने के लिए प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी हमको इतने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कैसे हम डिब्बे के बाहर सोच सकते हैं। उन्होंने और हम कभी कभी सोचते हैं कि प्रभुपाद जी के कई इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं कि जो हमारे लिए लागू नहीं है, हमारे लिए काम का नहीं है, और कभी और खास करके जैसे बच्चों को बड़ा करने का उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि वो गुरुकुल में हमको जाना चाहिए, गुरुकुल में पढ़ना चाहिए, और हम सभी सोचते हैं कि गुरुकुल हमारे लिए तो नहीं है, क्योंकि और सच बात है कि जब हमारे बच्चे उस उम्र के आए थे तो हमने गुरुकुल का विचार करा था, फिर सोचा था कैसे हम भेजेंगे, इतना दूर हम कैसे भेजेंगे, और हमारे पास हम एक मंदिर भी शुरू कर रहे थे क्योंकि जहाँ हम लोग गए थे कोई मंदिर नहीं था, तो हम सोचे कि हम दोनों अकेले कैसे संभालेंगे, बच्चे की जरूरत थी, तो गुरुकुल तो बिल्कुल आउट हो गया। तो फिर सोचा कि क्या फिर प्रभुपाद जी जो हमारे बच्चों के लिए कहते हैं कैसे उनको बड़ा करो तो हमारे लिए लागू नहीं है, क्योंकि गुरुकुल सिस्टम हम में डाल नहीं सकते बच्चों को। नहीं, प्रभुपाद जी जो कहते हैं बच्चों को जिस तरह बड़ा करना चाहिए वो हम किसी परिस्थिति में भी कर सकते हैं और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। देखिए गुरुकुल के मतलब हो गुरु, गुरु और कुला, और गुरु तो टीचर हुआ और कुला हुआ आश्रम। तो हम यही चीज अपने घर में कर सकते हैं। और गुरु कौन हुए? हम सब हुए, माँ बाप हुए। और कुला क्या हुआ? जो आश्रम घर, घर हो गया। तो हम घर में बच्चों को इस तरह बड़ा कर सकते हैं जैसे कि वो गुरुकुल हो। और ऑफकोर्स थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, परिवार में तो कई परिस्थिति फर्क होती है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं हम उसी तरह कर सकते हैं जैसे कि प्रभुपाद जी ने कहा। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर हम अपने बच्चों को ठीक, ये हमारे जो बच्चे हैं ना वो मामूली बच्चे नहीं है, बहुत खास है, क्योंकि हम भक्त बन रहे हैं। और नेचुरली हमारे बच्चे बहुत इस दुनिया में खास हैं, क्योंकि वो इस दुनिया में आए हैं जिसमें अपना जो कुछ भी बचा कुचा इस जिंदगी में है उसको खत्म करके वापस बैक टू गॉड हेड जाएं। इसलिए हमें अपने बच्चों को ऑर्डिनरी नहीं समझना चाहिए। और ये इतना ही काफी नहीं है कि अगर वो हमारे से जन्म लिया है तो काफी अभी हम भक्त हैं, इतना इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमको सबको मालूम है कि सिर्फ जन्म ही काफी नहीं होता है, जन्म के साथ साथ अच्छी ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। तो प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस अब आइए हम लोग स्लाइड्स के थ्रू देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए स्कूल सिर्फ अगर ये इसके लिए जाते हैं कि हम सीखें कि कैसे खाना खाते हैं, कैसे और अच्छी तरह रहें, तो ये तो सभी कोई करता है, वो जानवर भी करता है, लेकिन स्कूल का मतलब ये तो सभी बच्चा सीख सकता है। अगर छोटे बच्चे को लो और उसके मुंह में कुछ डालो तो जानता है कि मुंह ही में जाएगा, तो इसको सिखाने के लिए हम स्कूल नहीं भेजते हैं अपने बच्चों को, इसलिए सिखाने के लिए भेजना चाहिए कि उसको बुद्धि आए, भगवान की तरफ उसको अकल आए और उसको भक्ति करे। तो अब तो हमने जो होम स्कूलिंग इसलिए करी, घर में इसलिए पढ़ाया क्योंकि हमने 2 साल बच्चों को स्कूल में भेजा था, और फिर हमने वहां पे जाकर के हम उनके क्लासरूम में बैठते थे, हमने नोटिस करा, हमने देखा कि बच्चों के लिए हर तरफ से एकेडेमिकली मतलब उनकी पढ़ाई के हिसाब से और स्पिरिचुअली दोनों तरफ से कमी बहुत है। और हमने एक बार देखा कि हमारा बड़ा बेटा मैथ क्लास में था, उसने 15 मिनट में 20 मिनट में उसने सारा अपना सवाल पूरा कर दिया और वो पूरे क्लास में ऐसे ही बैठा रहा। तो उसमें तो स्कूल अब जिसमें एक क्लासरूम में 20 बच्चे होते हैं तो वो सब एक एक बच्चे को थोड़ी पर ध्यान दे सकता है, टीचर ध्यान दे सकती है, तो वो तो एवरेज बच्चों के लिए बनता है। तो हमने देखा कि अगर बच्चा आपका ज्यादा स्मार्ट है तो वो बैठा रहता है, बोर होता है, और जो बच्चा कम स्मार्ट है नीचे है तो वो उसका भी ध्यान नहीं होता है। तो ये हमने देखा। और फिर दूसरा चीज जो खास करके जो मुझे खराब लगा वो जो वैल्यू सिस्टम है, जो बच्चों को क्या सिखाते हैं, आपने आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में कितना क्या हाल है इस समय स्कूलों में और सब जगह, तो वो हम अपने कृष्ण कॉन्शियस वैल्यूज उनको बहुत मुश्किल से सिखा सकते हैं, क्योंकि जब वो घर आते थे 8 घंटे करके तो वो बहुत थक जाते थे। अगर हम कोशिश करते थे कि उनको कुछ सिखाएं, भगवान की किताबें पढ़ें या कुछ मृदंग सिखाएं, तो उनका दिमाग और शरीर थक जाता था और हमें कुछ समय नहीं मिलता था। तो ये सब रीजन से हमने फिर डिसाइड करा कि चलो देखते हैं कि और कोई अल्टरनेटिव है क्या इसमें जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तब हमें पता चला ये होम एजुकेशन का, कि आप घर में बच्चों को शिक्षा और भी बढ़िया दे सकते हैं, एकेडेमिकली भी स्पिरिचुअली भी दोनों भी कर सकते हैं। तो होम स्कूलिंग तो अमेरिका में बहुत ही पॉपुलर है, इस समय 2.5 मिलियन लोग हैं जो होम स्कूलिंग कर रहे हैं और बहुत ही एक्सेप्टेड है, और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में उनको एडमिशन भी मिल जाता है, सब चीज है। तो हमने इसको फिर अपनाया, हमको बहुत डर लग रहा था क्योंकि हमारे लिए तो होम एजुकेशन हम सोच ही नहीं सकते, हम सोचते हैं कि बच्चों को जब तक स्कूल नहीं पढ़े तो कैसे उनकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है, और हम दोनों बहुत डरे हुए सोच रहे थे, लेकिन सोचा कि नहीं ट्राई करना चाहिए। तो हमने क्या करा कि गर्मी में शुरू करा, गर्मी की छुट्टी में हमने सोचा कि गर्मी की छुट्टी में करते हैं, और अगर काम नहीं करता तो उसको छोड़ देंगे, दोनों बच्चे स्कूल चले जाएंगे। तो हमने वहां पे रेडीमेड करिकुलम मिलता है पूरे साल भर का, तो हमने मंगाया, जैसे कि आपका यहाँ पे स्कूल का करिकुलम आप किताबें मंगवा सकते हैं, तो हमने पूरा करिकुलम मंगाया और आप विश्वास नहीं करिएगा पूरे साल भर का करिकुलम हमने 3 महीने में खत्म कर दिया। तो मतलब कहने का कि क्योंकि क्योंकि सभी और सभी पेरेंट्स का वहाँ जो होम स्कूलिंग करते हैं सभी का ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतनी क्वालिटी एजुकेशन होती है ना, जैसे एक से एक, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं कि बच्चा तभी पढ़ सकता है जब वो 20 बच्चों के साथ में हो, एक क्लासरूम में हो, एक टीचर को लेक्चर दे, तभी वो पढ़ सकता है। लेकिन बच्चा तो इस तरह भी पढ़ सकता है। एक्चुअली ये सिस्टम बहुत ही, ये जो सिस्टम है ना स्कूल में ढेर सारे बच्चों को एक क्लास में, ये सिर्फ 50 साल पहले शुरू हुआ है। उसके पहले जो हमारा सिस्टम था वो इसी तरह था, छोटे क्लासरूम जिसको कहते हैं ट्यूटोरियल सिस्टम। आजकल आज ये सिस्टम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जैसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज है, उसमें भी ये सिस्टम फॉलो करते हैं, जो होम स्कूलिंग, जो होम एजुकेशन का सिस्टम है। मतलब कि एक टीचर 3-4 बच्चे और वो और उनको डिस्कशन रूम में पढ़ाते हैं, वो पढ़ के आता है एक और फिर उसके बाद क्वेश्चंस पूछता है टीचर से और डिस्कशन होता है। तो ये हमारा बेसिक सिस्टम भी था पहले, और तो फिर इसलिए इतना इफेक्टिव हुआ, इसलिए 3 महीने में इसलिए खत्म हुआ, क्योंकि वो जो ये जो 1-to-1 होता है इसमें बहुत क्वालिटी एजुकेशन हो सकता है। और फिर जब मैंने 3 महीने इसको खत्म कर लिया तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम अपना प्रोग्राम बनाए, अपना करिकुलम बनाए, क्यों नहीं, क्योंकि हमारी बहुत अंदर से इच्छा थी कि हमारे जो शास्त्र है वो बहुत बहुत ऑर्डिनरी नहीं है, कि इसमें इतना ज्ञान और इतना हर तरह चीज, हर तरह का ग्रहण, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। थोड़ा इसको फास्ट पेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि टाइम कम है, तो इसलिए थोड़ा देखें। अच्छा, तो हमने क्या करा कि हमारी इच्छा हुई कि हम अपने दूसरे अपना संस्कृति पे करें। तो हमने क्या करा कि हमारा, आपने सुना होगा इस्कॉन मोटो है, हमारे इस्कॉन में 3 मोटो है, वो है प्यूरिटी इज द फोर्स, बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस और यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। आप लोगों ने सब सुना होगा ना ये सब, तो ये बहुत हमारे इस्कॉन का बहुत खास प्रिंसिपल्स हैं। तो इसके आधार पे मैंने अपना होम एजुकेशन बच्चों का करा। तो चलिए आइए इसमें फिर हम पहला वाला थोड़ा सा इस पे देखते हैं, और ये है प्योरिटी इज द फोर्स। इसके मतलब ये है कि जो घर का जो हमने वातावरण करा वो इस तरह होना चाहिए जो जो उसके कृष्णा कॉन्शियसनेस में उसमें मदद हो। तो उसमें नेचुरली वो सब चीजें तो आप लोगों ने जानते होंगे, एक तो होना चाहिए कि तो जैसे कि हम लोग अच्छा घर बनाने के लिए, बच्चों का अच्छा वातावरण बनाने के लिए हम लोग सुबह थोड़ा सा पूजा करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं बच्चों के साथ सभी कोई, और फिर उसके बाद छोटे बच्चों के संग थोड़ी जीटी वर्शिप भी करना चाहिए और प्रसादम देते हैं बच्चों को। तो ये सब चीजें जो है मदद करती है बच्चों के ट्रेनिंग के लिए। लेकिन ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और वो उसमें से एक है टेलीविजन। तो ये बहुत अब तो हिंदुस्तान में इतना ज्यादा हो गया कि अगर किसी से कहो कि टेलीविजन नहीं देखो तो सोचते हैं कैसे ये हो सकता है, बच्चों को कैसे नहीं दिखा सकते, हम कैसे नहीं देखें। लेकिन टेलीविजन हमारे लिए बहुत ही खराब है, हर तरीके से खराब है, खासकर कि वो जिसे भक्त होने के नाते हम चार प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं ना, प्रीचिंग वो नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, इस तरह करके, तो वही चारों प्रिंसिपल्स टेलीविजन को देखने से टूट जाती है। तो एक तरह से हम वो प्रिंसिपल्स फॉलो करने की कोशिश करते हैं, एक तरह से टेलीविजन देखने, क्योंकि टेलीविजन में है ही क्या, और इमीडिएटली वो चारों प्रिंसिपल्स विजुअली सब टूट जाती है। तो हम लोग को तो इसलिए अगर हम भक्त बन रहे हैं तो इसका ध्यान देना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
ये टेलीविजन का थोड़े स्टडीज निकले और US में कहते हैं कि द एवरेज चाइल्ड जो बड़ा होता है वो ही सीज 4-6 आवर्स ऑफ टेलीविजन एवरी डे, हर रोज मिनिमम 4 घंटे वो टीवी देखेगा। तो आप सोचिए वो 8 घंटे तो स्कूल जाता है, 8-9 घंटे सोता है, उसके बाद उसको 1-2 घंटे चाहिए तैयार होने के लिए, और सारा टाइम सब टीवी में जा रहा है। तो ये टीवी को डिस्क्राइब करा गया एज द वन आइड गुरु। तो जैसे आप एक मधुर उर्मिला है, उन्होंने बीटीजी में एक आर्टिकल लिखा था, उसका नाम था वन आइड गुरु, कि जब आप घर पर कोई गुरु को इनवाइट करते हैं तो आप उनको लिविंग रूम में लाते हैं, बीच में अच्छे से सीट करते हैं, फिर उनको बैठाते हैं और उनसे सुनते हैं बहुत शांति से बैठ करके। और अगर उन गुरु को आप देखते हैं दो तीन बार महीने में, तो आप दो तीन बार महीने में बुलाते हैं। तो ये ऐसा एक गुरु है जिसकी केवल एक आंख है, लेकिन आप इसको एक अच्छा सा पेडेस्टल देते हैं अपने घर में। और आजकल तो हर बेडरूम में रखते हैं टेलीविजन, तो हर बेडरूम में आप उसको अच्छे से जगह देते हैं। और जो आपके सबसे इंटीमेट मोमेंट्स हैं, जो सबसे वीकेस्ट मोमेंट्स हैं, उस टाइम पर ये गुरु आपको शिक्षा दे रहा है, आप उससे सीख रहे हो घंटों घंटों तक बैठ करके। तो हम लोग वैसे गुरु से अपने मतलब एक्चुअल गुरु से इंदा नहीं सुनेंगे मैक्सिमम दो तीन बार महीने में, लेकिन इस गुरु से हम लोग रोज सुनते हैं और एटलीस्ट फ्यू आवर्स डे सुनते हैं। तो ये वाला जो गुरु है, ये आप अगर देखिए मॉडर्न सोसाइटी में, ये इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैकेनिज्म, सबसे बड़ा पावरफुल टूल है कलयुग का, जिससे ये कली फैल रहा है। तो काफी आप घरों में देखेंगे, आप लोग का अवेयरनेस बढ़ रहा है कि ये टीवी से क्या हो रहा है, कि जो बच्चों का जो एजुकेशनल जो आईक्यू है, जो एजुकेशनल जो उनका जो पावर है कॉन्सेंट्रेशन, वो कम हो रहा है, बिकॉज टीवी पर एवरी 3 सेकेंड्स वो पिक्चर बदलती है। तो आजकल अगर आप घरों में जाएं यूएस में, तो बाहर एक जो लोग फिर कॉन्शियस हो गए, एक साइन रहेगा, उससे टीवी का मतलब पिक्चर बना रहेगा और फिर एक राउंड से सर्कल रहेगा और उसपे एक्स, कि इस वन आई गुरु को हमको बाहर फेंक देना चाहिए, कि वी शुड क्लोज इट। इसलिए बिकॉज टेलीविजन से बस टेलीविजन इज बेसिकली वेस्ट ऑफ टाइम। पहले के अगर आप देखिए, पहले के लोग जब उनको कोई घर का कोई इवेंट रहता था, कोई जो साथ में टाइम स्पेंड करते थे, तो सब बैठ करके कुछ बातचीत करते थे, देवर सिट डाउन एंड डिस्कस समथिंग, कोई चीज यू नो डिस्कस करते थे। लेकिन आप सब लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं, तो टेलीविजन से हम लोग का एजुकेशन बहुत स्लो हो जाता है, बच्चों का एजुकेशन बहुत स्लो हो जाता है, हम लोग की जो इंटेलिजेंस है वो डल हो जाती है टेलीविजन से। लेकिन तब काफी लोग कहते हैं कि टीवी में काफी अक्सर एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, तो इसका क्या करें? कि अक्सर आप टेलीविजन में देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे यू नो एजुकेशन डिस्कवरी चैनल होता है, ये सब चैनल। एक पेरेंट ने कहा था कि माई चाइल्ड लर्न इंग्लिश थ्रू टीवी, टेलीविजन से उसने इंग्लिश सीखा है। तो टीवी इज अ गुड थिंग। एक जब फ्लाइट में आ रहे थे, तो दुबई से फ्लाइट थी टू दिल्ली, तो उसमें एक आदमी बोला था अफगानिस्तान से, वो मुझसे हिंदी में बात कर रहा था, जिसने कहा था मैंने हिंदी सीखा है फ्रॉम बॉलीवुड फिल्म, और उसकी जो हिंदी थी वो भी फिल्म टाइप थी, हर सेंटेंस में कहता था अरे यार। तो उसका जो पूरा वोकैबुलरी हिंदी का सब उसको मिला था टीवी से। तो लोग कहते कि अक्सर ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, तो क्यों नहीं इस एजुकेशनल प्रोग्राम्स को देखना चाहिए, बच्चों को यू नो ये देखना चाहिए। तो हम लोग उससे कहते कि यस, ऐसा है कि एक दो अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम्स होंगे टीवी पर, आप देखेंगे एक दो कभी कभी अच्छे यू नो डिस्कवरी चैनल्स, ये एजुकेशनल चैनल्स हो जाएंगे। लेकिन एक सेइंग है कि वन ग्लास ऑफ वाइन इज गुड फॉर यू, राइट? वो कुछ डॉक्टर्स कहते कि अगर आप एक ग्लास छोटा सा ग्लास वाइन का हर रोज लेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब नहीं करते। क्यों? बिकॉज वो कहते हैं कि हु स्टॉप्स एट वन ग्लास ऑफ वाइन, कि अगर आप एक ग्लास रुक जाएंगे तब तो हेल्थी है, लेकिन प्रॉब्लम है कि लोग तो पीते रहते। तो टेलीविजन ऐसा है कि अगर हम लोग एक बार उसकी आदत बना दें, एक बार देखना शुरू कर दें, बस एजुकेशनल प्रोग्राम से शुरू करेंगे या कार्टून से शुरू करेंगे, तो फिर तो वो बंद नहीं होगा, हम लोग देखते जाएंगे। और इन द वायलेंस इन द टेलीविजन, जैसे स्लाइड लिखा, चारों जो हम लोग के प्रिंसिपल्स हैं वो उन प्रिंसिपल्स को तोड़ता है। तो बहुत से स्टडीज भी अमेरिका में और दुनिया भर में करी गई है कि सारे जो माध्यम है एजुकेशन के सबसे स्लोएस्ट सबसे वीकेस्ट माध्यम है टेलीविजन। अगर आप कोई किताब को पढ़ेंगे तो किताब पढ़ने से आप ज्यादा सीखेंगे जितना अगर आप टीवी पर कोई चीज देखेंगे या समझेंगे। एंड द सेम अप्लाई टू इंटरनेट ऑल्सो। इंटरनेट भी ऐसी है कि इंटरनेट इज इंफॉर्मेशन विदाउट अ सोर्स। तो बोथ टेलीविजन और इंटरनेट, काफी प्रोफेसर वो क्लासरूम में कहते थे कि सारा तुम्हारा रिसर्च नीड्स टू बी बेस्ड ऑन बुक्स। व्हाई? बिकॉज लोग इंटरनेट पर जाते हैं, एक क्लिक करते हैं, कोई सर्च कीवर्ड डालते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं और फिर उनको कोई रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन उस रिजल्ट का कोई सोर्स नहीं है, उस रिजल्ट का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो इंफॉर्मेशन विदाउट अ सोर्स से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है लेकिन नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
अब तो हम थोड़ा ट्रैवल कर रहे हैं आपकी, और आपकी जब आए थे और सेमिनार दे रहे थे एक दो जगह, तो लोग बता रहे थे अपनी अपनी कहानियां कि कैसे माँ बाप जब बच्चों से परेशान हो जाते हैं तो उनको बस टीवी के सामने डाल देते हैं, है ना। तो ये बहुत खराब चीज है, क्योंकि बच्चे का दुनिया जो है रियलिटी वो टीवी हो जाता है, क्योंकि वो सारे जो इंद्रियां हैं वो उसको जकड़ लेती है, तो सोचता है कि वो ही है सब कुछ। जैसे कि गोपाल कह रहा था कि जब आप किताब पढ़ें तो आपको सोचना पड़ेगा, अगर किताब में लिखा है कि बहुत सुंदर सीनरी है, वहाँ पेड़ पौधे हैं, पानी है, तो आपको सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी मतलब आपने सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर टीवी देखा तो कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, सामने आपके सीन है ना। तो आपको उसमें क्या होता है कि बच्चे जो टीवी पर बड़े होते हैं तो उनके जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, जो किसी चीज को लेकर के और सोचना और समझना, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके सामने सब कुछ रहता है। तो इसलिए किताब, जैसे ये कह रहा था कि ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दिमाग को सोचना पड़ता है। इसलिए जब जो लोग टीवी देखते हैं वो मेंटली लेजी हो जाते हैं। इसलिए आप देखिए कि सब दुनिया भर में जो टीवी ज्यादा देखते हैं उनकी मैथ और रीडिंग स्किल्स बहुत पोअर हो जाती है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल लेजी हो जाता है, रोबोट की तरह हो जाता है हर तरफ से। कुछ लोग कहते हैं कि टीवी हमारा बच्चा नहीं देखेगा तो बेवकूफ दिखेगा दुनिया में। आप देखिए, लेकिन आप देखिए कितना समय लगता है किसी चीज को समझने के लिए। अगर दुनिया में कितनी चीजें हो रही हैं, कितना समय लगता है उसको समझने के लिए। आप न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पढ़े, सब चीज समझ में आ जाता है। और खास करके भक्त तो इतना इंटेलिजेंट होता है क्योंकि शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र इंटेलिजेंस है उसके पास। और कोई भी इवेंट अगर होती है, कोई दुनिया में कोई चीज हो रहा है, तो फट से वो उसका कृष्णा कॉन्शियस विचार दे सकता है। कोई भक्त ऐसा नहीं होगा दुनिया में जो कि बुद्धू लगता है किसी के सामने। आप देख लीजिए कोई भक्त होगा, क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है, कृष्णा हैज ऑल द नॉलेज मटीरियल और स्पिरिचुअल, तो उसका भक्त क्यों बेवकूफ दिखेगा। हमारे बच्चों ने कभी टीवी नहीं देखा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो जाकर के बेवकूफ दिखे। अब ये है कि हर बच्चा या कोई अडल्ट भी हर सर्कल में नहीं फिट कर सकता, चाहे वो टीवी देखे चाहे नहीं देखे, कितना भी टीवी आदमी देख ले, लेकिन हर एक सर्कल में वो पॉपुलर नहीं हो सकता। तो हमें अपना चॉइस करना पड़ेगा ना कि हमें क्या, हमारे लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी है। तो ये भी आर्ग्यूमेंट फेल हो जाता है कि हमारा बच्चा बेवकूफ हो जाएगा, मेरे बच्चे को अकल नहीं आएगी इस तरह करके। तो जैसे कि गोपाल कह रहा था, इंटरनेट भी इसी तरह बहुत ही नुकसान है बच्चों के लिए, क्योंकि एक तो इंटरनेट का जो कंटेंट है कि मालूम नहीं कि जो बच्चा जो इतना उसको सब चीज सीखने की इतनी लगी रहती, क्यूरियस जिसको बोलते हैं, इतना उसको वो रहता है कि हमें सब चीज देगा, तो उसके लिए तो इंटरनेट बहुत खराब है कि मालूम नहीं वो करते करते कहाँ पहुंच जाए और क्या चीज देख ले, जो कि इसके लिए बहुत खराब है। इसलिए अब मालूम है स्कूलों में इंटरनेट के थ्रू होमवर्क देने लगे, बहुत ही खराब है। इतनी छोटी उम्र में इंटरनेट का स्क्रीन के सामने बच्चा अपना होमवर्क कर रहा है, ये बहुत खराब है। तो अब कहेंगे अब क्या करें, तो मतलब कि कहने का कि इंटरनेट को उसी तरह यूज करना चाहिए जैसे कि कोई औजार हो, जैसे कोई टूल हो, है ना, कि जैसे कि कोई थोकने की हैमर जिसको कहते हैं ना, अगर वो हो तो हम उसी के लिए यूज करेंगे ना। ये तो है नहीं कि हम हैमर को पॉकेट में रख लेंगे और उसके संग कोई रिलेशनशिप करेंगे इस तरह करके नहीं। तो इंटरनेट इस समय क्या हुआ कि सारे जो यंग बच्चे हैं इंटरनेट पे वो हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये हमारा जीवन है और इसके थ्रू वो फ्रेंडशिप बनाते हैं और इसके थ्रू ये तो मशीन है, इसके थ्रू अगर हम किसी के संग दोस्ती बढ़ाएंगे तो हम हमेशा हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तभी आप देखिए कि इतना ज्यादा अब यंग लोगों में इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया है, हम धीरे धीरे उनको खो रहे हैं, वो हमारे उनके में कितना बड़ा गैप हो रहा है आप देखिए, है ना। सोसाइटी में देखिए कि यंग बच्चा बड़ों के संग रिलेट ही नहीं करता, उसकी दुनिया बिल्कुल अलग हो गई है और ये सब चीजें ना टीवी और इंटरनेट कर रही है, क्योंकि हमारे पास बच्चों के पास हमारे लिए टाइम है ना हमारे पास बच्चों के लिए टाइम है, जो टाइम है वो इंटरनेट और टीवी न तो आईपॉड उसमें गेम्स वगैरह चल रहा है, ये हमें अपने बच्चों से दूर कर रहा है। और बच्चों के पास अलग जिंदगी है, उनका अलग कपड़े हैं, उनके अलग लाइफस्टाइल है, ये सब चीजें हमको दूर कर रही है। इसीलिए भक्त के पास देखिए ये सब चीजें नहीं है, हम जो करते हैं बच्चे करते हैं, एक ही चीज करते हैं ना हम लोग, उसी तरह के फेस्टिवल्स इंजॉय करते हैं, उसी तरह हम खाना खाते हैं। तो इसलिए टीवी और उसका बहुत उसको नहीं करना चाहिए। अब यह है कि टीवी को ये लोग कहते हैं कि टीवी को बंद कर देंगे तो बच्चा क्या करेगा फिर, मतलब वो कैसे मतलब और जगह जाता है टीवी देखता है, मतलब कहने का कि घर में अगर कंट्रोल करें इस चीज को तो बाहर बच्चा जाएगा थोड़ा बहुत तो एक्सपोज रहेगा तो वो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट घर में अगर माँ बाप नहीं देखे तो बच्चों पे अच्छा वो होता है, एग्जाम्पल होता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं बच्चा देखना चाहता है लेकिन एक्चुअली कमजोरी हम लोग में है, क्योंकि हम लोग क्योंकि देखना चाहते हैं तो हम लोग बच्चों को कहते हैं। अगर हम अपने को कंट्रोल कर ले और सब पूरा भक्त की कम्युनिटी मिल करके इस चीज को करें प्रेस, इस चीज को इस पे ध्यान दे तो बच्चा को लगेगा देखो हम भी नहीं देखते तो वो भी भक्त की फैमिली नहीं देखती है, वो भी डिवोटी फैमिली, तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए इसमें, इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने। अगर हम एक दो स्लाइड्स और करेंगे फिर उसके बाद हम सोच रहे थे कि जितना समय बचेगा तो उसमें हम थोड़ा सा प्रश्न ले लेंगे इसके बारे में, क्योंकि मेरे पास ये फर्स्ट सेक्शन है ना, हमने आपसे बताया था प्योरिटी इज द फोर्स, ये खत्म हो जाएगा फिर अगला सेक्शन का पता समय नहीं होएगा हमारे ख्याल से। तो बस, और फिर घर का जो वातावरण जैसे मैंने कहा था कि अगला स्लाइड प्रोग्राम कि मॉर्निंग प्रोग्राम कल होना चाहिए, मतलब घर का दिन शुरू हमेशा होना चाहिए भगवान का नाम लेकर के, ये तो हम लोग को मालूम है, हमारे पूर्वजे भी ऐसे करते थे और ये प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा एस्टैब्लिश करा सब मंदिरों में मंगल आरती और श्रृंगार आरती, ये पूरा दिन शुरू हमेशा इससे होना चाहिए बच्चों का, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनका मन बहुत शांत हो जाता है और उनको उनकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज पे निकलती है, उनकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज बनती हैं। और कभी कभी बच्चे अब स्कूल हमारे जा रहे हैं तो सुबह टाइम नहीं मिलता तो सुबह छोटा सा कर सकते हैं बस 10 मिनट का या कुछ, और जब शाम को आए तो सब परिवार मिल करके आरती करें और चैंटिंग करें, इससे परिवार साथ में हो जाता है। ये तरीका परिवार का संगठन होने का कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है बनस्पति हम बैठ के टीवी इकट्ठे देखें, वो कुछ नहीं, वो अलग करता है हमको, लेकिन जब हम मिल करके शाम को भजन करें या आरती करें और उसके बाद थोड़ी 10 मिनट शास्त्र पढ़ें, इससे हमारे पूरे परिवार में बहुत शुद्धि आती है और हमारा परिवार पास और पास होता जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। और तरीके हैं जापा के, ये तो हम लोग जानते हैं कि जापा हमारे लिए और बच्चों के लिए कितना जरूरी है। तो प्रभुपाद जी ने एक दो चीजों का वार्निंग दिया है कि बच्चों को जापा के लिए इनकरेज करना चाहिए बहुत, लेकिन उनको फोर्स नहीं करना चाहिए, जितना छोटे जब होते हैं तो धीरे धीरे उनको उस तरफ लाना चाहिए, वो हमारे एग्जाम्पल से सीख सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल भी उनको इनकरेज नहीं करा जाए। नेक्स्ट स्लाइड। और दूसरा चीज है, अगला चीज है प्रसादम का। कभी कभी हम लोग सोचते हैं अरे बच्चे छोटे हैं मांगते हैं इधर उधर की चीजें, बच्चे हैं कोई बात नहीं उनको दे दो, लेकिन सबको मालूम है कि प्रसाद इतना जरूरी होता है क्योंकि वो जैसे कहते हैं इट हिट्स राइट एट द सोल, मतलब कहने की प्रसाद खाना जो है हमारे कॉन्शियसनेस को बहुत इफेक्ट करती है। अगर आप हमेशा प्रसाद खाएं और कभी कभार आप बाहर जाके खा लें तो आपको फौरन पता लग जाएगा कि आपने कुछ गलत करा है, कि मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा अंदर से, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस फौरन इफेक्ट कर जाती है। तो इसी तरह बच्चों का जो रेस्टलेस नेचर होता है, उनकी शैतानी होती है, उसको आप एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं प्रसाद से। जैसे कि अगर जू में जाएं तो एक शेर को कैसे लोग कंट्रोल करते हैं, उसको खाना जो जो देता है वो पूरा उसको कंट्रोल कर सकता है। तो उसी तरह बच्चों को हम उनका जो कहते हैं ना कि इतना वो परेशान करते हैं और मिसबिहेव करते हैं, तो उसको हम प्रसाद से कंट्रोल कर सकते हैं। और स्पिरिचुअली तो बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारे घर में मेरे हस्बैंड बहुत पर्टिकुलर थे प्रसाद के बारे में। कभी अपने आचार से सिखाते थे बच्चों को कि अगर प्रसाद नहीं है तो नहीं खाना चाहिए। वो बहुत इधर उधर अपने काम से वो बहुत दूर दूर जाते थे, ट्रैवल करते थे, और कभी कभी उनका खाना बिल्कुल खत्म हो जाता था और उसके बाद भी वो अपना मेवा वगैरह खा करके, डेट्स वगैरह खा करके रह जाते थे। तो उससे उनको बच्चों को बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला कि प्रसाद कितना जरूरी होता है बच्चों के लिए। तो यहाँ एक और है, दो स्लाइड स्किप कर दीजिए, उसके बाद डीटी वर्शिप। तो ये भी बहुत जरूरी है बच्चों को शुरू से सिखाना कि भगवान की कैसे पूजा करते हैं। और इसलिए क्योंकि बच्चों को अगर जैसे कि बच्चे जैसे डॉल से खेलते हैं ना, गुड़िया से खेलते हैं, तो उससे गुड़िया को समझते हैं कि सचमुच की है, उसको खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं और सब कुछ करते हैं ना, तो क्योंकि पर्सनलाइज हो जाता है। उसी तरह अगर बच्चों को अगर भगवान का मूर्ति पूजा करवाएं तो वो भगवान को समझने लगता है कि ही इज अ पर्सन, तो आगे चल के वो कभी मायावादी नहीं बनेगा। देखिए वो शुरू से बच्चों को एक भगवान को अपना फ्रेंड मानेगा, अपने भगवान मानेगा। इसलिए बहुत जरूरी होती है। भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में कहा है कि जिस घर में मूर्ति पूजा नहीं होती है उस घर में वो बच्चे जो बड़े होते हैं तो वो एथियस्ट या तो निकलेंगे या बिल्कुल मटेरियलिस्ट निकलेंगे, क्योंकि उनके पास कोई चीज नहीं है फोकस करने के लिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चे, कभी कभी हम सोचते हैं हम कर लेंगे, बच्चों की जरूरत नहीं है ये सब चीजें, नहीं, बच्चों को भी इनकरेज करना चाहिए। अब उनके उम्र के हिसाब से होगा, लेकिन जैसे हमारे बच्चे 3 साल के 5 साल के थे तभी हमने शुरू किया, उनके पास छोटे छोटे गौर नहीं पाए थे, और इतने बड़े बच्चे दिन भर खेलते हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं इस तरह खेले। वो करीब करीब दो कभी कभी हम लोग 2-3 घंटे करते थे भगवान की सेवा मिलकर के, और वो नहलाते थे, कपड़े पहनाते थे, सजाते थे, तो ऑल्टर पे रखते थे, आरती करते थे, हम लोग भोग लगाते थे। तो इतना हमें आश्चर्य लगता था कि 2-3 घंटे जैसे उनको कोई और चीजों का खबर नहीं था, इतना फोकस करते थे क्योंकि उनको इतना अच्छा लगता था। तो इसी तरह बच्चों को, छोटे बच्चे को खेल के बजाय इसमें लगाना चाहिए, और फिर नेचुरली जब थोड़ी धीरे धीरे बड़े होंगे तो नेचुरली थोड़ा पढ़ाई जब बढ़ती है तो मूर्ति पूजा कम करेंगे, है ना। और पापा जी अपनी जीवनों में बताते हैं कि कैसे उनके फादर ने दिया था ना राधा कृष्णा, जब वो बहुत छोटे थे और उसको वो पूजा करते थे, और जो बड़े मंदिर राधा गोविंद मंदिर जाते थे तो वहाँ पे जो जो देखते थे नकल करके घर पे करते थे। तो प्रभुपाद जी खुद जितने देखे हमारे शास्त्रों के जितने आचार्य हैं, युधिष्ठिर महाराज, उद्धव, मीराबाई, सब कोई करते थे अपने बचपन में। तो ये कभी कभी हम लोग इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम सोचते अरे ये कौन सी खास बात है, ये सब आगे चल के करेंगे, लेकिन जब हम ये सब करते हैं तो हम लिटरली मतलब भगवान को कि नजदीक आ जाते हैं। तो ये तो इसलिए बहुत जरूरी है ये सब चीजें। तो हम यहाँ पे खत्म करते हैं पहला सेक्शन अपना, और फिर हम सोच रहे थे कि अगर किसी पास इस सेक्शन पे प्योरिटीज ऑफ फर्स्ट पे कोई प्रश्न हो तो हम उसके आंसर कर दें, किसी भी टॉपिक पे जो अभी बोला है, टेलीविजन पे या कोई चीजें पे आपको अगर कोई डाउट हो या कुछ, या तो ये होम एजुकेशन का आइडिया मेरा ये था कि हम स्कूल के वातावरण से उनको दूर रखना चाहते थे, क्योंकि और फिर घर पे खुद पढ़ाया मैंने, लेकिन बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने होम एजुकेशन ले लिया हिंदुस्तान में भी, भक्तों की कम्युनिटी में भी और बाहर भी, वो क्योंकि उनसे अगर नहीं होती पढ़ाई तो ट्यूटर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ ट्यूटरिंग तो बहुत होती है ना, स्कूल बच्चा जाता है 8 घंटे, फिर टीचर कहती है कि ट्यूटरिंग भी करो, तो ट्यूटरिंग भी करता है ना, स्कूल भी जाता है 8 घंटे और ट्यूटरिंग भी करता है, तो क्यों नहीं स्कूल निकाल दें उस फॉर्मूला से और ट्यूटरिंग ही कर दें, है ना। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो खुद पढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक सर्टेन लेवल आता है जब हमें मुश्किल होती है तब हम ट्यूटर लगा सकते हैं। हाँ, बहुत लोग के पास ये सुविधा नहीं है कि वो घर में, कि अब होम एजुकेशन के लिए तो माँ को घर पे रहना पड़ेगा, अगर वो नहीं कर सकती है तो फिर कोई बात नहीं, जो जो चीजें मैंने बताई है वो आप, बच्चा स्कूल जा रहा है तो भी आप अपना सकते हैं, जैसे आप मतलब डीटी वर्शिप करना हो तो आप वीकेंड्स को कर सकते हैं, अगर रोज नहीं कर सकते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करके, और टेलीविजन भी आप, तो जितनी भी चीजें बताई हैं आप पूरी तरह से कोशिश कर सकते हैं करने के लिए, मतलब कहने का कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बच्चा स्कूल जा भी रहा हो तो भी ये सब चीजें बहुत जरूरी है बच्चे के कृष्णा कॉन्शियसनेस सबकी, वो तो कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो उसमें कुछ न कुछ तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं, स्विमिंग है और शहरों में होते रहते हैं चीजें जो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है बच्चा, और फिर जब बच्चा बड़ा होने लगता है, जब हमारे बच्चे बड़े होने लगे तो वो हमारे टीचिंग सेंटर था छोटा सा, तो उसमें खूब मदद करते थे, तो उन्हीं में उनका खूब एक्सरसाइज हो जाता था, क्योंकि हम लोग का हेल्प चाहिए था तो सफाई ऑर्गेनाइजेशन में, डेकोरेशन में, फेस्टिवल्स इतने सारे होते हैं, तो बच्चा को फिर उसके लिए कितना अच्छा है नहीं, कितनी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है ये सब चीज करने की, तो उनको अपने आप ही फ्री में सारे टैलेंट्स हो गए थे, है ना सब, क्योंकि सब चीज को करना पड़ा हम लोग के साथ साथ, और बड़े खुशी खुशी करते हैं बच्चे तो, और जब बच्चा छोटा रहता है तो यू नो वैसे भी वो अगर दोनों टाइम मंगल आरती और ये मतलब जो दोनों टाइम आरती वगैरह करेगा तो उसमें कितना एक्सरसाइज हो जाता है, खेलता है कूदता है इस तरह करके, तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि जब तक उसके पास कितना तो नहीं हो स्पोर्ट्स वगैरह तो वो बच्चा हल्की नहीं निकल, थोड़ा तो चाहिए बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस जो प्रभुपाद जी ने दिया है बिल्कुल एवरीथिंग इज देयर, इट्स एन ऑल राउंड एजुकेशन, कोई चीज की कमी नहीं है, और क्या कमी महसूस भी तो हम उनको उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे भी बच्चा जब स्कूल जाता है तो तमाम उसके स्कूल के बाद माँ लोग उनको कार में बैठा के इधर इस प्रोजेक्ट में ले गई, इस गेम के लिए ले गई, उसमें ले गई, वैसे भी करते हैं स्कूल के बाद, वहाँ पे बहुत रिवाज है स्कूल के बाद फिर माँ लोग इधर उधर घूमती हैं, ये आर्ट स्पेशल क्लास और ये स्पोर्ट्स का और ये वो, तो वैसे भी करते हैं वो तो हम लोग, तो होम स्कूलिंग में भी होम एजुकेशन में भी ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो अब हम यहाँ पे जो हमारा अगला स्लाइड है वो हम आपको थोड़ा सा बता दें क्या है, इस समय तो समय नहीं है ज्यादा कुछ उसके बारे में कहने के लिए, वो है ये जो है सेकंड हमारा है ये बुक्स ऑफ द बेसिस, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि बच्चों को कैसे प्रभुपाद जी की बुक्स के ऊपर, प्रभुपाद जी की बुक्स के आधार पर हम कैसे उसको पढ़ा सकते हैं, अगला स्लाइड, और खास करके श्रीमद् भागवतम, ये जो प्रभुपाद जी ने चाहते थे कि बच्चों को उनकी किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कहते थे श्रीमद् भागवतम में सब कुछ है, जितना भी सब्जेक्ट्स हैं सारे कुछ हैं, हम आपको पढ़ दें ये कोट प्रभुपाद जी के बहुत ही खास है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आर स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली दे शुड टेक केयर ऑफ रीडिंग श्रीमद् भागवतम, we have therefore prescribed in our school Dallas and from the very beginning if they begin education with Bhagavad Gita and then come to Srimad Bhagavatam and then and read the whole literature then they will be more than MA PhD. Even astronomy, astrology, politics, sociology, atomic theory, everything is there. Therefore if you study Srimad Bhagavatam very carefully then you will get all knowledge completely. Throughout the whole world, whatever knowledge is there is in the Srimad Bhagavatam. If one simply reads the Srimad Bhagavatam, his education is the topmost. If one studies Srimad Bhagavatam, he is well versed in every subject matter. और हम लोग ने ये खुद experience करा क्योंकि हमने बच्चों को सिर्फ श्रीमद् भागवतम और शास्त्र पे उनको पूरी education दी और ये सचमुच में ये realize करा कि सचमुच में श्रीमद् भागवतम में सब कुछ है, सारे सब्जेक्ट मैटर्स हैं, कि जब उनको श्रीमद् भागवतम को पढ़ा लिया वो कॉलेज गए तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई किसी और सब्जेक्ट पढ़ने के, वो सिर्फ श्रीमद् भागवतम और शास्त्र पढ़ के गए थे और कॉलेज में पहली बार वो और सब सब्जेक्ट उन्होंने पहली बार वो सब्जेक्ट करे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीजें होती है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी पहली बार करा, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि प्रभुपाद जी की किताबें वो मास्टर्स लेवल है, पीएचडी लेवल है, सिर्फ मटेरियली भी, स्पिरिचुअली तो सब जानते ही है कितना कितना पावरफुल है, लेकिन मटेरियली भी कोई कमी नहीं है प्रभुपाद जी की किताबों में। और खास करके उनकी किताब में क्योंकि इतना सोच विचार करना पड़ता है तो बच्चों की जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा डीप हो जाती है, बहुत क्रिटिकल हो जाती है वो बड़े, क्योंकि देखिए हर हर कहानियों में ऐसा होता है कि सिर्फ ये नहीं बताते कि ध्रुव, जैसे ध्रुव महाराज की कहानी